अरे नहीं, और उसको मणि लेकर के वन में गया था। मणि क्या हुआ? भगवान कहते तो हम क्या जाने क्या हुआ। लेकिन लोगों को ये धारणा होती गई कि कृष्ण ने ऐसा काम किया है, हत्या किया है और चोरी किया है, मणि लिया। तो इसको यहाँ भगवान ने देखा कि आत्मनि दुर्जसह लिप्तम, यह दुर्जस कलंक वास्तव में एक लेप की तरह है, काजल की तरह है, लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। कलंक काजल के कारी, अनूप जलोटा गाते तो कहते ये कलंक। अब किसके किसको किसको समझाया जाए, और वास्तव में घटना का पता सब किसी को था ही नहीं, और भगवान को भी होता यदि प्रकट लीला में तो बता देते कि ऐसी ऐसी घटना हुई। लेकिन भगवान पर इतना बड़ा कलंक लगा, सब लोग निंदा कर रहे थे बार बार। तो अब एक दिन भगवान मीटिंग किए द्वारका में, और द्वारका के वरिष्ठ नागरिकों को ले करके और कहे कि चलिए हम लोग अब खोजें का क्या हुआ, यहाँ से कैसे निकला था प्रसेन, किस रास्ते से गया था, कहाँ कहाँ उसको खोजा जाए, पता लगाया जाए। भाई यदि भगवान पर झूठा कलंक है, लेकिन अब कलंक लग गया है तो उसका मार्जन तो करना ही पड़ेगा। तो नागर ही, नागर शब्द से तत्पर जो चतुर व्यक्ति या उस द्वारका नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ भगवान निकले खोजने के लिए, प्रसेन पदवी, प्रसेन का पता लगाने के लिए कहाँ हुआ, खो गया, क्या हुआ। तो गए तो जैसे निकला था, सत्राजित ने बताया होगा कि ऐसे मेरा भाई निकला यहाँ से गया, ऐसे गया, तो सबके साथ कई लोगों के साथ भगवान गए। तो गए तो वन में जाने पर हतम प्रसेनम, मरा हुआ प्रसेन दिखाई दिया, और उसके सिर शरीर पर सिंह के पंजे का निशान था मारने का। तो पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसकी मृत्यु का क्या कारण, सब लोग देख रहे थे, इसलिए भगवान और लोगों को ले गए थे, ये देख। सब लोग अब देखने लगे, एकदम सब लोग साफ देखे कि सिंह ने मारा है। अच्छा, पास में घोड़ा भी था, घोड़े को भी सिंह ने मारा है, ठीक है। एक बात का तो पता चल गया कि इसका वध सिंह ने किया, तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि कृष्ण ने सिंह को ललकार करके वध करा दिया, ऐसा तो नहीं कह सकता। वो स्वाभाविक वन में आया था और सिंह ने उसका वध कर दिया। उसको देख करके फिर आगे बढ़े, तब तक गुफा के द्वार पर एक भालू के द्वारा वो सिंह भी मार दिया गया था, सिंह भी मरा हुआ मिला। और ये लोग अनुमान किए कि वही सिंह मारा गया है जो प्रसेन को मारा है। इससे पता लग गया कि यहां से चला है सिंह, उसके पंजे के निशान हैं, और जाते जाते तब तक एक भालू के पंजे का निशान आया, रिक्ष का, तो उसने इसको मारा था। तो वृक्ष का पंजा उस पर लगा था सिंह पर, तो लोग समझ गए कि वृक्ष ने मारा। अच्छा, वृक्ष वहां से मार करके चला है, तो वृक्ष का पंजा मिलाते मिलाते चलने लगे जंगल में। कहीं कहीं तो पत्थर पड़ता था, वहां पंजा नहीं मिलता था, लेकिन जमीन पड़ने पर तो पता लग जाता था कि इधर से भालू गया। तो इस तरह से पता लगा रहे थे, और सब ददृशी जना सब देखते जा रहे थे। तो वहां जाते जाते उन लोगों ने देखा कि वृक्षराज बिलम धीमम अंधे न तमसावृत, वृक्षराज है बहुत बड़ा भालू, उसको नहीं देखे लेकिन वृक्षराज बिलम उसका बिल देखे। हम लोग जंगल में देखे हैं बिल वृक्ष का, वहां निकट जाने के तो बाद बाहर बहुत दूर से लोग रास्ता बदल कर भाग जाते हैं, वहां निकट थोड़ा दूर भी नहीं जा सकते, बहुत दूर से भागते हैं, बहुत भयावह होता है भालू। अगर मनुष्य को देख ले तो सीधे वो ऐसे नोच देता है, बकोट देता है, सब फाड़ देता है। एक बार मैं सुना था, हमसे आकर के डायरेक्ट सुना रहे थे एक व्यक्ति कि एक जगह वो भालू के बिल के पास थे, वो नहीं जानते थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो भालू निकला और आकर के उनके हाथ को चबाने लगा सीधे। यहाँ से कट गया था तो इस पर चिन्ह था बना हुआ, सब दिखा रहे थे कि हमको भालू पकड़ करके ऐसे मारने लगा। तब तक दूसरे लोग कुल्हाड़ी लेकर के पत्थर पर ठोके ठाए ठाए, तो वो भाग गया। इस तरह भालू बहुत भयानक होता है, उस पर भी रिक्षराज जो सिंह को मार सकता है वो कितना भयावह होगा। तो उसके बिल को देखे तो भीमम भयावह बिल था गुफा, और अंधे न तमसावृता, अंधकार से बिल्कुल भरा हुआ था। अब तो किसी का साहस नहीं हो रहा था कि अब कौन भीतर जाए, इतना पता लग गया कि सिंह को मार करके ये वृक्ष भीतर गया है। भीतर कौन जाए, सब लोग सबका गए कि अब तो हो गया, पता लग गया कि अब भगवान ने कहा पता तो लग गया कि प्रसेन को सिंह ने मारा है, सिंह को वृक्ष ने मारा है, लेकिन मणि का तो पता नहीं लगा ना। यदि मणि जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा कलंक नहीं जाएगा। मणि आखिर कहाँ है, प्रसेन मणि लेकर के आया था तो सिंह ने मारा, तो अनुमान किया जा रहा था कि सिंह ने मणि लिया होगा, फिर उससे वृक्ष ने लिया होगा, तो वृक्ष के बिल में ही मणि होगा ऐसा अनुमान करते हैं। तो और लोगों ने तो सीधे कहा कि नहीं कृष्ण अब छोड़ो, अब खत्म हो गया। भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग यहीं रुकिए बाहर और मैं प्रवेश कर रहा हूं। देखिए भगवान की भगवत्ता है, उस वृक्ष के बिल के पास जाना भी बहुत भयावह था, कठिन था, लेकिन उसमें अकेले भगवान प्रवेश कर रहे हैं। एको विवेश भगवान अवस्था पे बही प्रजा, प्रजा को द्वारका के अन्य लोगों को, वो भी बड़े बड़े वीर थे लेकिन उनको बही स्थाप्य बाहर रख करके कि आप बाहर रहिए, और अकेले विवेश उस दिल में अकेले प्रवेश किए। कोई मनुष्य से इस तरह का साहस नहीं कर सकता है कि वृक्ष के बिल में प्रवेश करे और बहुत भयावह जो अभी अभी सिंह को मारा है, और सब लोग बाहर रुक गए। लेकिन भगवान ने कोई अवधि नहीं बताया कि कब तक बाहर रहिएगा, उन्होंने ऐसे जैसे कहा कि आप लोग बाहर रुकिए, यहीं रहिए, तब तक मैं जाकर के आ रहा। तो प्रवेश किए। तत्र दृष्ट्वा मणि श्रेष्ठम बाल क्रीडन तम कृतम हर्तुम कृतमतिस्तस्मिन् अवतस्तेर्भ कांतिके। वहां जब भगवान गए बिल में चलते चलते तो भीतर जाकर के मणि श्रेष्ठ दृष्टवा, समंतक मणि को देखे। तो कहां देखे, बाल क्रीड़न कम कृतम, एक बच्चा था उसको, उसे खेल रहा था। बच्चे को क्या पता है, उसको खेल रहा था। बाल क्रीड़न कम कृतम, तो हरतुम कृतमति, उसको हरने की इच्छा भगवान किए। अजय तो चाहते तो बच्चे से छीन करके भाग गए होते, लेकिन भगवान को वास्तव में युद्ध करना था। युद्ध करना था, उसको लेना चाहते थे। लेने के लिए अवतस्थ थे अर्भकांति के, उस अर्भक के निकट, बच्चे के निकट वे खड़े थे। तब तक बच्चे की धाय ने देखा, नर्स ने देखा, अपूर्व व्यक्ति, सब कुछ भगवान का श्रृंगार, सुंदरता अद्भुत था, ऐसा कभी सुना भी नहीं था, देखने की तो बात दूर है। जब वो देखी तो हाय हाय करने लगी, चिल्लाने लगी जोर से। वृक्षराज कहीं और भीतर बिल में थे या कहां थे, वे सुन लिए, वो रोने लगी, चित्कार करने लगी। और इतना अपूर्व मनुष्य डर नहीं रहा था, पहले तो बिल में आ गया यही बहुत भारी अपूर्वता थी। इतने भयंकर बिल में आ जाना यह बहुत भारी अपूर्वता थी उसके लिए, कभी कोई मनुष्य नहीं आया, सिंह आदि नहीं आ सकते थे, मनुष्य की तो बात क्या है। और उसमें उसने देखा तो लगी जोर से चित्कार करने, रोने लगी। उसके चित्कार को सुन करके ऋक्षराज आए जमवान जी, और ये क्रोध में थे, इसीलिए क्रोध से विवेक नष्ट था, वो भगवान को पहचान नहीं पाए और आते ही मारना चालू किए कृष्ण। तो भालू का स्वभाव होता है वो नोचना बकोटना, वो आते ही स्वागत सत्कार नहीं किए, सीधे युद्ध चालू कर दिए। कछुत्वा अभिद्रवत क्रोधो जमवान बलिनाम बड़े, बलवानों में महाबली हैं जमवान जी, लड़ने लगे। सवई भगवता आते न जुजुधे स्वामी नात्मन पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो न अनुभावित। क्रोध में थे, क्रोध के कारण विचार नहीं किए भगवान के महिमा पर, निर्भयता पर विचार नहीं किए, और आकर के सीधे लड़ने लगे। जुजुधे किसके साथ युद्ध कर रहे? आत्मन स्वामी ना, अपने स्वामी के साथ। श्री राम अवतार में यही जामवान जी भगवान की सेवा करते थे, भगवान के लिए युद्ध लड़े थे लंका के मैदान में, भगवान की बहुत तरह से सहायता किए थे, सेवक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मन स्वामी ना युद्ध, अपने स्वामी से भिड़ गए, लड़ने लगे। पुरुषम प्राकृतम मत्वा, जमवान इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के दास, सेवा में रहे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण को प्राकृतम पुरुषम मत्वा, ये सामान्य आदमी समझ करके युद्ध करने लगे, विचार नहीं किए। तो द्वंद युद्धम सुतुम लम उभयोर विजिगी सतो हो आयुधास्म द्रुमहेदर भी क्रव्यार्थे सेनयोर युवा। जमवान में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा, खूब सुतमुल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे को जीतने की आशा से युद्ध कर रहे थे। तो जैसे दो बाज पक्षी मांस के लिए लड़े, उस तरह से सेमंतक मणि के लिए दोनों लड़ रहे थे। अथवा जमवान का आशा नहीं था उससे कि सेमंतक मणि लेने आया है, उनको पता नहीं था, केवल लड़ने का स्वभाव था, लड़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं सेन पक्षी का, सेन का अर्थ होता है बाज। बाज जब लड़ते हैं तो बहुत पैंतरा से, दो बाज को लड़ते हुए आप लोग देखिए बहुत तरस, और आते हैं कभी कभी नहीं लड़ पाते हैं, ऐसे पार हो जाते हैं कभी कुछ कभी कुछ, तो दोनों बहुत पैंतरा ले रहे थे, वो चाह रहे थे इसको मारें, इसको मारें, इसको पराजित करें। तो आयुध, पहले तो ये आयुध से लड़े, आयुध है जो भी होगा साथ में, और जमवान चाहे जो भी रखे होंगे, आयुध से लड़े, आयुध सब टूट काट कर खत्म हो गए। तो इसके बाद अस्म पत्थर उठा उठा करके एक दूसरे पर पटकने लगे, बहुत भारी भारी पत्थर, पत्थर फेंकने लगे, उधर से पत्थर फेंकते थे, उधर से पत्थर फेंकते थे, कभी पत्थर ही आपस में टकरा कर चूर हो जाते थे, क्रेशर का काम हो रहा था। तो इस तरह से पत्थर से लड़े, जब पत्थर भी खत्म हो गए तब द्रुम वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ने लगे, वृक्ष भी उस क्षेत्र के खत्म हो गए तब दोनों हाथों से लड़ने लगे, उधर से दो हाथ, इधर से दो हाथ मारने, और अब एक दूसरे पर मुष्टिका का वार करने लगे। और इस तरह से लड़ते लड़ते आसित तद अस्ता विंसा हम इतरे तर मुष्टि भी, एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध का 28 दिन बीत गया और एक सेकेंड विश्राम नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं कि अविश्रमम अहर्निशम, रात दिन युद्ध होता था, और उसमें भी अरे रात में कुछ रुके या दिन नहीं, अविश्रमम न तो कोई खाता था, न कोई पीता था, न सोता था, केवल युद्ध चलता रहा। कभी कभी भगवान इस तरह से युद्ध रस का स्वादन करते हैं। और कैसे युद्ध हो रहा था, अष्ट विंशत 28 दिन युद्ध होता रहा। ऐसे पहले दिन तो शुरू में ही सब आयुध पत्थर पेड़ खत्म हो गए, अब केवल मुष्टिका से मार हो रहा था, 28 दिन चलता रहा। और कैसा लग रहा था आघात, वज्र निष्पेश परुषे, वज्र का अर्थ बिजली जो कड़कती है वज्र, और निष्पेश का अर्थ आघात, वज्र का जैसे आघात होता है वैसे एक दूसरे पर भी मुष्टिका से मार रहे थे कठोर, और रात दिन मारते रहे, युद्ध चलता रहा 28 दिन। कभी कभी मन में जिज्ञासा होती कि भगवान इतना क्यों लड़ रहे थे, क्या जरूरत थी, एक तमाचा ऐसा मारते कि उसी समय उसको होश आ जाता, लेकिन लगभग उनके समान ही वे लड़ रहे थे। परंतु कृष्ण मुष्टि विनिष्पात विनिष्पिष्टंगोरुबंधन क्षीण सत्व स्वीन गात्र तमाहाती विस्मित। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जंगवान के देह की सारी संधियां ढीली पड़ गई, संधि जहां जहां है ये सब खुल गया। और अब भगवान ने अपने मुष्टिका के प्रहार का वेग बढ़ाया तो जहां मारते थे वहां पीस जाता था उनका मांस रस, इतना जोर से मारने लगे। देखने में वही सुकोमल हाथ है कमल के समान, लेकिन अब वज्र से भी अधिक भयानक रूप में गिरने लगा। तो जब भगवान जहां जहां मारते थे तो निष्पिष्ट पिसा जाता था उनका शरीर जंगवान का, और जैसे जैसे अब उनके बंधन ढीले होने लगे वैसे वैसे ज्ञान होने लगा मारने पर कि ये मनुष्य नहीं है, धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। कृष्ण मुष्टि हाँ तो छीण सत्व, उनकी शक्ति जमवान की शक्ति बिल्कुल छीण हो गई कम हो गई, और भगवान की शक्ति तो जैसे है वैसे ही, तो अव्यय है। भगवान के मुष्टिका में कोई घाव नहीं लगता था, और जमवान जी का शरीर तो टूटने लगा बिल्कुल, और शीर्ण गात्र, और शरीर में सब जगह पसीना पसीना से लथपथ हो गया। अब किसी तरह खड़ा रहे यही काफी है, अब वो गिरने ही वाले थे, लेकिन गिरने से पहले ज्ञान हो गया। भगवान कभी कभी प्रवचन द्वारा ज्ञान देते हैं तो कभी मार करके ज्ञान देते हैं। मारने से पता चला कि ये मनुष्य नहीं है। अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग तरह से ज्ञान देते हैं। सीन गात्र तमहाती व विस्मित, बहुत विस्मित हुए जमवान जी, और विस्मित होकर के उन्होंने भगवान से इस तरह कहा, जाने त्वाम सर्वभूता नाम प्राण ओजह सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। पहले नहीं जाने की कौन है, और मार खाने के बाद कहते हैं जाने त्वाम, मैं आपको जान गया, आप कौन, मैं समझ गया पहचान गया आप मनुष्य नहीं है, आप सर्वभूतानाम प्राण ओजह सहो बलम, आप समस्त प्राणियों में ओज हैं, स हैं, बल हैं और प्राण। ओज का अर्थ होता है इंद्रियों में स्फूर्ति, सह का अर्थ होता है मनोबल, और बलम का अर्थ होता है शारीरिक बल। किसी भी प्राणी में जो बल है, शारीरिक बल है, या इंद्रियों में देखने सुनने आदि की क्षमता है, या मन में उत्साह है, प्राण है, इस सब के कारण आप सबके स्रोत है, मैं समझ गया आप साक्षात भगवान है, और सभी प्राणियों में बल का संचार करते हैं, बलम बलवताम चाहम। तो भगवान कहें, अगर कृष्ण कहें कि ये सब तो विष्णु है, विष्णु समस्त प्राणियों में बल है, सब कुछ है, सब में प्रवेश किए हैं, अंतर्यामी है। प्रभु कहते हैं विष्णु, आप ही विष्णु है, मैं जान गया आप ही विष्णु है, सभी वस्तुओं के जन्मदाता हैं और सब में प्रवेश किए। पुराण पुरुषम, आप पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का अर्थ है कि सबसे पहले के पुरुष जिसने सबको जन्म दिया है, इसको पुराण पुरुष कहते हैं। पुराण माने बूढ़ा नहीं, पुराण का अर्थ होता है अनादि, सबसे पहले के व्यक्ति। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं लेकिन नवजुवक है, नवजौवनम च। जमवान जी कहते हैं आप पुराण पुरुष हैं और प्रभु विष्णु आप ही समस्त जगत के जन्मदाता हैं, महाप्रभावशाली हैं, सबको अपने वश में रखते हैं, अभीश्वरम और सबके ईश्वर, ब्रह्मा आदि सबके ईश्वर आप हैं। आप विष्णु हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप प्रभु विष्णु हैं, अभीश्वर हैं। जो लोग भगवान कृष्ण पर बहुत सी शंकाएं किया करते हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं कि इन्होंने इतना विवाह क्यों किया, यह किया, वह किया, इन सब प्रसंगों को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब पता लगेगा कि कृष्ण क्या है। यहाँ पर भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। सभी प्राणियों में प्राण ओज सह बल श्री कृष्ण है, विष्णु है, पुराण पुरुष प्रभु विष्णु और अधीश्वर है। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा सृज्या नाम अपि गत चसत, आप ही विश्व सृष्टि करने वालों के सृष्टा है। इस विश्व की सृष्टि करने में ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, मरीचि आदि प्रजापति, लेकिन इन सबके जन्मदाता आप। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, विश्व की सृष्टि करने वालों के आप सृष्टा है। और सृज्या नाम अपि जच्चस, और सृज्य के भी आप सृष्टा है, आप निमित्त कारण है। और जच्च सत जो उपादान है वह भी आप ही है। इस विश्व के निर्माण में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण ये पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांचों को मिलाकर के इस विश्व बना है। इसके भी जन्मदाता भगवान है, ये भगवान से सारा भौतिक प्रपंच निकला है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से बातचीत हो रही थी किसी व्यक्ति की, तो वो कह दिया, प्रभुपाद जी ये कहते थे कि सब कुछ के जन्मदाता भगवान है, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। तो जल का जिक्र किया, इतना अपार जल है, तो वो व्यक्ति का H2O कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके जल बना हुआ है, भगवान क्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह दिए तो इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो वो बिल्कुल हका वका हो गया, वो ये कहाँ से आया इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना है, ठीक है इनके मिश्रण से जल बना है, लेकिन ये कहाँ से आया, उतना उतनी संख्या में हाइड्रोजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो सब कुछ के जन्मदाता वास्तव में भगवान है, इतना माटी ये आया कहाँ से, भारत में मिट्टी है, अमेरिका में मिट्टी है, सब जगह मिट्टी है, इतना पहाड़ पर्वत सब ये कहाँ से आया। इतना तो सबको मालूम है कि कोई आदमी नहीं लाया, जो भी आता है खाली हाथ आता है, अपने बसने के लिए क्या टोकरी भी मिट्टी लेकर नहीं आए, कुछ नहीं लेकर के आए, न मिट्टी लेकर के आए, न पानी लेकर के आए, न हवा लेकर आए, न आग लेकर आए, कोई बर्तन नहीं, पैंट नहीं, कटोरी नहीं, कुछ नहीं, और आकर के सब यूज कर रहे हैं और सब छोड़ करके ही जाएंगे, देह भी छोड़ करके जाएंगे। तो कोई दूसरा व्यक्ति बनाया है सब कुछ, यूज करते हैं, भोगते हैं, इसी को लोग समझते हैं हम बहुत काबिल हैं, हम सब किए, ऐसा नहीं है, सब कुछ भगवान किए। कभी विश्व सृष्टि करने वालों के भी कारण है, सृज्य के भी कारण है और उपादान कारण भी है। कालह कलयतानि सब, और आप काल हैं, प्रभु विष्णु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, काल है, काल सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, काल सब में परिवर्तन करता है, तो आप कलयतान ईशह काल, परिवर्तन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ आप काल हैं। और पर आत्मा तथा आत्मना, तो भगवान का यह गुण बहुत सुंदर है कि भगवान सब कुछ के ईश्वर हैं, दिव्य हैं, परे हैं, फिर भी सबके आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं अंतर्जामी रूप से, वे अप्राकृत हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, फिर भी समस्त जीवों के हृदय में हैं। यही भगवान का वह गुण है जो उनके स्नेह को व्यक्त करता है सभी प्राणियों के प्रति। भगवान किसी जीव का त्याग नहीं करते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, उसके हृदय में रहते हैं उसको स्मृति ज्ञान आदि देने के लिए। परंतु जीव इतना मूर्ख है कि वह भगवान पर कभी दृष्टि नहीं करता है, भगवान के द्वारा बनाई ही वस्तुओं को भोगने में लगा रहता है। पर भगवान बहुत दयालु हैं, वे जीवों के साथ रहते हैं, यह उनकी विशेषता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने द्वारा बनाए हुए लोगों के साथ रहे। अगर मान लीजिए किसी के चार पांच पुत्र हों तो क्या पिता पुत्रों के साथ रहेगा सब समय? ज्यादा ज्यादा एक के साथ रहेगा, वो भी बाहर रहेगा, सब समय नहीं रह सकता। लेकिन भगवान इतने जीव बनाए हैं सबके हृदय में रह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठ, तो भगवान के इस स्वभाव को आत्मा कहते हैं, स्वरूप को आत्मा कहते हैं, उसको अंतर्जामी भी कहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। इतने महान हैं, निर्लिप्त हैं माया से, सुख दुख से परे हैं, प्रभु हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी सबके हृदय में रहते हैं, यह उनकी अद्भुत विशेषता है। तो मैं पहचान गया कि आप सबके अंतर्जामी हैं। और अब कहते हैं कि आप इस प्रकार हमारे तो इष्ट देव ही हैं, रघुनाथ जी हैं, मैं पहचान गया, आप श्री राम हैं। तो भगवान श्री राम की कुछ लीलाओं को कह रहे हैं जम्बान जी। जस्ये सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्ष ही वर्तमान दिशत न कृतिमिंग लब्धि सेतुः कृतः स्वजस उज्ज्वलिता चलंका रक्ष शिरांसि भूपेतुरि सुक्षतानि। हे प्रभो, जस ईषद उत्कलित, जस जिनके आपके ईषद उत्कलित, थोड़ा सा रोष उत्कलित हुआ था, उत्कलित का अर्थ थोड़ा बढ़ा था, रोष का विशेषण है उत्कलित, उत्कलित का अर्थ है थोड़ा प्रस्फुटित होना, थोड़ा आपने क्रोध किया था समुद्र पर, तो थोड़ा क्रोध करने से उस समय कटाक्ष मोक्ष ही आपने क्रोध भरी दृष्टि से देखा था समुद्र पर, तो समुद्र आपको रास्ता दे दिया था लंका में जाने के लिए। कैसा समुद्र है? आपके क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र का पानी उबलने लगा और उस पानी में रहने वाले ग्राह और तिमिंगल महामत्स्य आदि क्षुब्ध हो गए। भगवान जब समुद्र पर क्रोध से देखे थे तो भगवान के नेत्र पड़ते ही समुद्र का पानी उबलने लगा, गर्म हो गया। यह अद्भुत बात है, परंतु बिल्कुल सत्य है। घटना ऐसी है कि भगवान को पता लग गया कि रावण सीता को लंका में ले गया है, लेकिन बीच में समुद्र पड़ रहा था। विभीषण जी ने कह दिया कि ये समुद्र आपके कुलगुरु हैं, महाराज सगर के पुत्रों ने इसको खाना बनाया था, इसलिए अपने पूर्वजों के द्वारा अगर ये खोदा गया है समुद्र तो पूज्य है, इसे रास्ता मांगना चाहिए। तो भगवान भी मनुष्य लीला कर रहे थे, उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया समुद्र तट पर और समुद्र से मांगते रहे कि ये हमको आप रास्ता दे दीजिए, खाली हो जाइए, दोनों भाग जल हटा लीजिए और हम लंका में चले जाएं। बहुत भारी सेना जाने वाली थी, लेकिन विनय ने माना तो जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। लक्ष्मण आन सरासन भयबिन होइ न प्रीत। तो भगवान अंत में कहे कि ये जड़ जलधि, ये जड़ व्यक्ति क्या मानेगा। लक्ष्मण से कहा उन्होंने कि धनुष बाण लाओ, और धनुष बाण अभी लाया नहीं गया था, वे क्रोध से समुद्र की तरफ देखने लगे तो समुद्र का पानी खोलने लगा, उबलने लगा। बताइए इस समय दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक लोटा पानी को भी गर्म कर दे खूब क्रोध में देखे, बल्कि बारी बारी से सारे मनुष्य एक लोटा के पानी पर देख देख कर मर जाएंगे, लेकिन वो गर्म नहीं हो सकते। होगा कभी गर्म? अगर ऐसा होता तो फिर हीटर आदि लगाने की क्या जरूरत थी, बाकेट में देखते गर्म हो जाता उसी से नहा लेते। लेकिन भगवान के देखने से अथाह जल राशि गर्म हो गया, और नक्र ग्राह और तिमिंगल आदि घबराने लगे। तब समुद्र मूर्तिमान होकर भगवान के शरण में गिर गया। तो सेतु कृतः स्वजस, भगवान ने सेतु का निर्माण किया। कहा जाता है कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया गया था। 100 योजन मतलब 800 माइल लंबा और 80 माइल चौड़ा रोड था, बीच में एक भी पिलर नहीं था। अद्भुत पुल बनाया गया था, और वो भी पत्थर से बनाया गया था। तो वो सेतु क्या था? स्वजस, वो भगवान की कीर्ति थी, वास्तव में जस था, और उज्ज्वलिता च लंका, और लंका जलाई गई थी। हनुमान जी ने लंका को जलाया था, और लंका के मैदान में भगवान के बाणों से दशानन के बहुत से मस्तक गिरे थे। वह युद्ध भूमि केवल भुजाओं और सिरों से पट गई थी। भगवान ने बहुत कौतुक किया था, रावण के 20 भुजा थी और 10 सिर थे। भगवान राम बार बार काटते थे और फिर वो पनप पाते थे, भुजाएं भी हो जाती थी, सिर भी हो जाता था, फिर काटते थे। बहुत उनको आनंद आ रहा था काटने में। काटते काटते लंका का मैदान केवल कटी हुई भुजाओं से और सिर से भर गया। बाद में उन्होंने रावण के नाभि में अग्नि बाण मारा, एक साथ 31 बाण मारा था, तो इससे रावण मर गए, गिर गए। तो जमवान जी कहते हैं कि आप वही हमारे प्रभु हैं, मैं आपको पहचान गया, बहुत दुख की बात है कि मैंने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे युद्ध किया, आप हमें माफ करें, क्षमा करें, अब मैं जान गया। तो श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्षराजानम अच्युतः व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः अभिमृश्यार विन्दाक्ष पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम प्रेम गंभीर या गिरा। इति विज्ञात विज्ञानम, अब जमवान जी को विज्ञान का ज्ञान हो गया। विज्ञात विज्ञानम, यही है विज्ञान। भगवान को उनके गुणों के साथ जानना कि ये ईश्वर हैं, ये प्रभु है, ये विविध अवतार लेते हैं, इन्होंने ही समुद्र पर पुल बांधा था, रावण का वध किया था, समस्त प्राणियों में यही ओज सह बल आदि हैं, यही सृष्टि के कारण हैं, ब्रह्मा आदि को जन्म देने वाले हैं, यह है विज्ञान। और भगवान ने देखा कि अब जमवान जी को विज्ञान का ज्ञान हो गया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वो सुंदर वचन में बोले, जिस समय भगवान बोल रहे थे ऋक्षराज जी से, तो उस समय भगवान में कुछ ऐसे गुण प्रकाशित हो रहे थे, जैसे सुंदर वचन बोलना, कृपा करना, तो माता देवकी के तरफ से वे गुण प्रकाशित हो रहे थे। कोई व्यक्ति जहां भी जाए, लेकिन हमेशा उसमें अपने पिता का गुण, माँ का गुण रहता है, तो इस तरह से घर जाना है, ऋक्षराज पर कृपा करना है, ये माता देवकी के गुणों से लगता है कि श्री कृष्ण प्रभावित। कितना दुख दिया था कंस माता देवकी को, फिर भी कंस पर कृपा ही करती थी, ऐसा वर्णन है। तो भगवान बहुत प्रेम से बोले, और संकरेण पाणिना, सुख देने वाले हाथ से भगवान सब जगह छुए ऋक्षराज को, सिर का नदी, तो जो शरीर टूटा था, फूटा था, धस गया था, वो सब बिल्कुल ठीक हो गए। अभिमृष का अभिमर्शन खूब अच्छा से, केवल छू दिए, देखिए भगवान के दिव्य श्री विग्रह का प्रभाव। कोई है ऐसा डॉक्टर केवल छू दे और सारा घाव साव सूख जाए तो सब ठीक हो जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई शरीर बैठा देते हैं, कुछ वरदान होता है, लेकिन इतना मारा हुआ शरीर, टूटा हुआ, सब जगह घाव हो गया था, फूल गया था, क्या क्या, लेकिन भगवान ने ऐसे सब जगह छू दिया, बस बिल्कुल ठीक हो, पहले से भी अच्छा हो गया। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाकर के जमवान जी का सब ठीक हो गया। पहले तो दूसरा स्पर्श मिला था, लेकिन अब संकरेण पाणिना, शंकर का अर्थ समकर, जो सम करे, कल्याण करे, उसको शंकर कहते हैं। भगवान वो दृश्य कितना सुंदर उपस्थित किए होंगे, उनके मस्तक से लेकर के सब जगह से छू रहे ठीक हो गए। भगवान परिपूर्ण है, उनको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है, उनके साथ सब कुछ है, केवल देख दे इतने में ही सब लोग ठीक हो जाता है, हाथ से छूना तो बहुत दूर की बात। तो इस तरह से उन्होंने जमवान जी को ठीक किया और बड़े प्रेम से बोले, प्रेम गंभीर वचन से अथवा मेघ गंभीर वचन बोले, मणि है तो रिह प्राप्त भयम ऋक्षपते बिलम, मिथ्याभिशापम प्रमृजम आत्मनो मणि नामुना। हे ऋक्षराज, हम लोग यहाँ मणि के लिए आए हैं। अब हम लोगों से तात्पर्य यह है कि और भी लोग हैं जो द्वार के पर बिल के बाहर हैं, तो वयम लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ मणि के लिए आए हैं। यही मणि अमुना कहकर के भगवान दिखा रहे हैं, अमुना ये जो मणि है इसके लिए हम आए हैं। तो इस पर प्रश्न हो सकता है, तो मणि की आपको इच्छा हो गई है? नहीं नहीं, इसको ले करके दिखा करके मुझ पर जो मिथ्या कलंक है उसको दूर करना है, हम क्या मणि करेंगे, हमको मणि सणी की इच्छा नहीं, लेकिन इस मणि को ले जाऊंगा, द्वारका में दिखाऊंगा और सारा इतिहास बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मणि यहाँ बरामद हुई, यहाँ पहुंची थी, इसके लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग आए हैं और लोग द्वार पर हैं, अथवा द्वारका भी लौट गए होंगे और हम भीतर आ गए थे। वयम से तात्पर्य है कि हम लोग मणि के लिए जंगल में आए थे, इस बिल के पास आए, लेकिन और लोग बाहर रुक गए, मैं भीतर आ गया। और मणि से हमारा इतना ही तात्पर्य है कि अमुना, इस मणि से मैं अपना मिथ्याभिशापम प्रमृजन, मैं अपने मिथ्या अभिशाप का, कलंक का परिमार्जन करना चाहता हूँ। भगवान के कहने का आशय है कि मुझे मणि की कोई इच्छा नहीं, मणि नहीं चाहिए, लेकिन आया हूँ मणि के लिए, इसको दिखाना है। यदि मणि द्वारका में नहीं पहुँचता है तो हम पर बहुत अपजस है और बंधुओं में भी विरोध हो सकता है। इस तरह से भगवान कहना है, कितना शुद्ध भाव से भगवान बोल रहे हैं, हम मणि के लिए आए हैं, इसको दिखाना है, इसलिए। इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवती मुदा अरहणार्थम समणिना कृष्णायोपजहार है। इतना कहने पर जमवान जी तो जानिए कि प्रभु हैं, भगवान हैं, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया भगवान का और अपनी कन्या को अर्पण किया इनके लिए। जाम्बुवती जिसका नाम था, बहुत सुंदरी, और दहेज के रूप में मणि दिए, क्योंकि वास्तव में वो तो जीव वृक्षराज का मणि हो गया था, वो तो कमाई थी उनकी, न सिंह को मार करके लिए थे। और दहेजार्थम दहेज के लिए, पूजा के लिए उन्होंने दिया मणि को, कन्या को भी दिया और उपहार दिया। तो उधर द्वारका में क्या हो रहा था, जो लोग गए थे बिल के पास वो कितना दिन रहे, वो केवल 12 दिन रहे थे और युद्ध 18 दिन हुआ था, 28 दिन। वे बेचारे 12 दिन बिना खाए पिए सब वहीं पड़े रहे, और जब नहीं भगवान लौटे तो उन लोगों को भी भय हो गया कि अब कुछ खतरा हो गया, क्या हो गया, और लोग रोने लगे, बहुत दुखी हो गए और वहां से भय के मारे भागे उस दिल के पास से द्वारका आ गए। उसको कह रहे हैं, अदृष्ट्वा निर्गमम सौरे प्रविष्टस्य बिलम जनः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुःखितः स्वपुरं ययुः। वो लोग जो गए थे, वो लोग 12 दिन तक उस बिल के बाहर भगवान की प्रतीक्षा किए, लेकिन उसके बाद भगवान नहीं आए तो सब बहुत दुखित हुए और स्वपुरं ययुः अपने नगर लौट आए, द्वारका लौट आए। वहां आकर सब लोग सुनाए, निशम्य देवकी देवी रुक्मिणी ज्ञानक दुंदुभि सुहृदज्ञातयो शोचन बिलात कृष्णम निर्गतम। तो जो लोग भी सुने कि कृष्ण भयानक बिल में प्रवेश किए हैं और नहीं लौटे, इतना दिन बीत गया, तो बहुत दुखित हो गए, जिसमें प्रधान रूप से माता देवकी, रुक्मिणी जी, वसुदेव जी, अन्य भी सुहृद बंधु बांधव सब विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे। कृष्णम अनिर्गतम, कृष्ण बिल से बाहर नहीं आए। तो स्नेह है, सौहार्द है, बंधु भाव है, इसलिए सब बहुत दुखित हुए। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वारकौकसः उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धे। अब सब लोग द्वारका में गाली देने लगे, निंदा करने लगे सत्रह जी की, क्योंकि ये इस बात का पता तो आकर लग गया था, वो लोग आकर बता दिए कि सत्रह जीत का वध किया था, सत्रसेन का वध सिंह किया था और सिंह का वध ऋक्ष किया। बहुत से द्वारका के लोग गए थे, उसमें सत्रह जीत के ही आदमी थे, तो वे लोग आकर साफ बताया कि नहीं नहीं, प्रसेन का वध तो सिंह किया है। तब अब द्वारका में यह समाचार फैला, सब लोग सत्राजित को बहुत बुरा कहने लगे, बहुत निंदा करने लगे, और खासकर जब भगवान नहीं लौटे इस कारण से, तो सब लोग महामाया दुर्गा जी की उपासना करने लगे, कृष्णों को लब्ध है कि कृष्ण शीघ्र आ जाए, हे माँ कृपा करो। जिस दुर्गा जी की मूर्ति की ये लोग उपासना कर रहे थे, उसका नाम था चंद्रभागा देवी दुर्गा, चंद्रभागा, तो उनके उपासना कर रहे थे, कृष्ण उपलब्ध है। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब ये लोग उपासना कर रहे थे माता दुर्गा की, तो माँ दुर्गा प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहीं कि कृष्ण शीघ्र दर्शन देंगे, और ज्यों कहा त्यों कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आ गए, प्रकट हो गए। ये कथा है, यहाँ भी यह संकेत है, जैसा हम प्रादुर्भव भगवान प्रकट हो गए, ऐसा नहीं कहीं से आए हों, जंगल में गए थे तो उस रास्ते से आए नहीं, मंदिर में जहाँ दुर्गा जी की पूजा हो रही थी, दुर्गा जी की आराधना हो रही थी, तो माँ दुर्गा ने कहा कि आप लोग शीघ्र कृष्ण का दर्शन करेंगे, तो दुर्गा जी की बात को सत्य रखने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उधर आशीर्वाद निकला दुर्गा जी का, उधर भगवान प्रकट हुए। यहाँ कह रहे तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशा सच प्रादुर्बभुव सिद्धार्थ सदारो हर्ष्यन हरिः। भगवान ने सदार अपनी पत्नी जम्बवती के साथ ही प्रकट हुए, सबका हर्ष बढ़ गया। उपलब्ध हर्षि केशम मृतम पुनरिवागतम सहपत्निया मणि ग्रीवम सर्वे जात महोत्सव। तो हृषिकेश को पा करके सब लोग बहुत खुश हुए, वैसे खुश हुए जैसे लोक में कोई व्यक्ति किसी परिवार का मर गया हो और फिर से जी जाए तो उस परिवार में इतना आनंद भर जाता है, उस तरह से भगवान को देखकर आनंद हुआ। भगवान के लिए मृतम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लोक में कोई मर करके जी जाए और जितना आनंद होगा उसके स्वजनों को, उस तरह से महोत्सव हुआ, आनंद छा गया और श्री कृष्ण उस मणि को गले में लगाए हुए थे क्योंकि उनको दिया गया था सजे थे, तो साफ लगा करके उधर से आ रहे थे, उधर प्रकट हुए थे, सब लोगों ने देखा। जैसे मणि ग्रीवम भगवान को कहा गया, सह पत्निया मणि ग्रीवम सत्राजितम समाहूय सभायाम राज सन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै निवेदयत। तो फिर महाराज उग्रसेन के अध्यक्षता में एक सभा की गई, सबको इकट्ठा किया गया, भगवान ने इकट्ठा किया, उग्रसेन जी प्रधान आसन पर थे और सत्राजित वगैरह सब बैठे। तो भगवान ने सारा आख्यान सुनाया कि हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ऐसे सिंह ऐसे घोड़ा मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, ऐसे उसके पहले सब कह चुके थे दूसरे लोग, फिर भी सभा में कहना जरूरी था और भगवान गवाही भी लेते थे जो लोग गए थे, आप बोलिए आपने क्या देखा, आप क्या देखे। तो सब ने कहा यही कि प्रसेन को मारा है बाघ ने, सिंह ने, सिंह को वृक्ष ने, वृक्ष को मार करके इस तरह से मैं लाया हूँ मारी। तो सत्राजित को सुना करके और सबके सामने भगवान ने मणि मणि तस्मै निवेदय और मणि दे दिया। मणि इसलिए भगवान दे दिए कि नहीं देने पर फिर हल्ला होता है कि जेना प्रकार जेना के क्यों नहीं मणि छीन लेते हो, ये सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कहा था कृतवर्मा ने कहा, और ये सही बात थी, उसने नहीं कहा था, इन लोगों ने प्रस्ताव किया था कि हम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्राजित ने कुछ कहा नहीं था, तो इसको लोग मान लिए थे कि हमारे साथ विवाह करने के लिए कहा था और कर दिए कृष्ण के साथ, तो यह अभी अपने भाई के समान परलोक क्यों न चला जाए प्रसेन की तरह। तो सब सुधन्वा कहा कि बाप रे बाप, श्री कृष्ण को पता लगेगा तब क्या होगा। तो वो लोग कहे कि पता कैसे लगेगा, रात में छिप कर मारोगे और कृष्ण बलराम है नहीं यहाँ, ये लोग हस्तिनापुर गए हैं, पांडवों के जलने का समाचार सुनकर के लक्ष्मण में दोनों भाई चले गए थे। अच्छा अवसर है, एकदम पता नहीं लगेगा, जब कोई आदमी काम करने चलता है तो ऐसा ही सोचता है कि बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और सुधन्वा लोभ में पड़ गया, हत्या करे, ये कथा तो कल आएगी विस्तार से। भरी सभा में वो मणि दे दिया भगवान ने, सचाते वृणितो रत्नम गृहत्वा वांग मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम अगमत सेन पाप मना। उस भरी सभा में मणि तो लिया हो, भले नहीं कर रहा था लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं लीजिए, तो लिया, उसका सिर झुका हुआ था सत्राजित का और बहुत दुखी था मन में, अपने पाप से अपने अपराध से उपजल रहा था, तो यही चिंतन करता रहता था कि मैंने बहुत बलवान लोगों से बैर कर लिया, बलवान से बैर कर लिया, एक तो बलवत विग्रहाकुलम, बलवत का एक अर्थ है बलवान है, बलवत का अर्थ है जिसका बड़ा भाई बलराम है उससे द्वेष किया है, ये बलराम तो कभी भी मार सकता है कि तुमने हमारे भाई को इस तरह का अंकित किया, अथवा बलवानों के साथ मैंने द्वेष किया, झूठा इस तरह से प्रचार किया, अब क्या करूं, कथम सृजामि याद पर अजह प्रसिद्ध वा चित कथम, कैसे मेरा पाप जाएगा, और कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। किम कृत्वा साधु मह्यम से न सफेद जनो जता, क्या करने से मेरा कल्याण होगा, कौन सा शुभ कर्म मैं करूं और कैसे लोग मेरी निंदा करना छोड़ेंगे। मैं अदीर्घदर्शी हूँ, बहुत दूर तक विचार नहीं किया। अदीर्घदर्शी उसको कहते हैं जो दूर तक विचार नहीं करता, जिसे संकीर्ण विचार होते हैं। क्षुद्र, मैं छोटा हूँ, बहुत मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, द्रविण लोलुप, मैं धन का लोभी हूँ। बहुत बेचारा रात दिन सोचता रहता था क्या करूं कैसे करूं। तब उसके मन में आया कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को अर्पण करूं कृष्ण को, और यह मणि भी कृष्ण को अर्पण करूं। यही उसके मन में विचार आया। तो दास्य दुहितरम तस्मय स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायोयम समीचीन संतीर्ण चान्य था। तो उसने यही निर्णय किया कि मैं अपनी पुत्री को कृष्ण को अर्पित करूं, सत्यभामा को, और यह रत्न भी, स्त्री रत्न सत्यभामा है, स्त्रियों में रत्न, और यह रत्न यह अर्पित करूं, तब शांति होगी, नहीं तो अब दूसरे उपाय से नहीं, मतलब मेरे पाप की शांति तभी होगी। एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजारः। इस प्रकार का निर्णय करके सत्राजित अपनी परम शुभ गुणवती पुत्री को भगवान को अर्पित किए, और मणि भी बहुत प्रयास करके अर्पित किए। ताम सत्यभामां भगवान उपये में जथा विधि बहुभिर याचितां शील रूपौदार्ज गुणान्वितान। तो सत्यभामा जी के साथ भगवान ने ठीक उसी तरह से विवाह किया विधि पूर्वक, जैसे रुक्मिणी जी से किया था, वैसा ही फिर द्वारका सजाया गया और महान उत्सव हुआ, ये समझ लेना चाहिए। यद्यपि सत्यभामा से विवाह करने के लिए बहुत से राजकुमारों ने कहा था, बहुभिर याचिता, बहुत लोग याचना किए थे, क्योंकि सत्यभामा में शील रूप उदारता और अनंत गुण थे, फिर भी सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कराया। लेकिन जब कन्यादान कर रहे थे वे सत्राजित और भगवान को मणि दे रहे थे, तो भगवान ने मणि लिया नहीं। देखिए इसको दीर्घ दर्शन कहते, मणि नहीं लिया नहीं। भगवान आह न मणि प्रतीक्षाम वयम नृप। यह नृप शब्द महाराज परीक्षित के लिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान, हे राजा परीक्षित, भगवान ने कहा कि वयम मणि न प्रतीक्षाम, हम मणि नहीं लेंगे, हम सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन हम आपसे मणि नहीं लेंगे। तवास्तां देव भक्तस्य, आप सूर्य देवता के भक्त हैं, आपके लिए शोभा की बात है, आप इसको रखिए। भगवान कटाक्ष कर रहे थे, दम करते, आप सूर्य देवता के भक्त हैं, ये आप ही रखिए, हम मणि नहीं रखेंगे। वयम च फल भागिना, और मणि का दृष्ट अदृष्ट जो भी फल है उसके तो भागी हम हैं ही। भगवान का गूढ़ अभिप्राय था कि आपको कोई पुत्र है नहीं, यही एक पुत्री है सत्यभामा, तो आपका जो भी धन है वो तो मेरा है ही, मैं आपका दामाद हूँ, तो ऐसे भी आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे, दोनों एक ही बात है, आपके पास जो कुछ भी है सब मेरा ही है, लेकिन अभी आप रखिए। भगवान दिखाना चाहते थे कि मणि और क्या उत्पाद करेगा। और बहुत सोच समझकर भगवान कोई बात काम कर रहे हैं, कहीं भी मान लीजिए दहेज के रूप में भी सत्राजित भी दे रहे हैं, और भगवान यदि मणि रख लेते तब भी लोग कहते कि देखो किसी न किसी उपाय से घुमा फिरा करके मणि ले ही लिया। शुरू में कहा था कि दे दो मणि उग्रसेन जी को, तो अब क्यों रख लिया। सही सत्राजित कहता था कि ये कृष्ण अपने लिए मणि मांगा, इसलिए भगवान बहुत दूर का सोच करके कहा नहीं नहीं मणि ही नहीं रखे। भरी सभा में उन्होंने कहा मणि नहीं रखेंगे, वैसे तो आपका जो कुछ भी है, मणि हो चाहे कुछ भी हो, सब हमारा ही है, क्योंकि आपको कोई पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने मणि लौटा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविंद दग्धानाकर्ण्य पांडवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरुन् भीष्मं कृपं स विदुरम् गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः।
श्रीवादरायणीर्वाच
विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दः दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरुन्
भीष्मं
कृपं स विदुरम् गन्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः। लब्ध्वै तदन्तरं राजन् सद्धन्वानमुचतुः अक्रूर कृतवर्माणौ मणिः कस्मान् गृह्यते। श्रीबादरायणी उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह राम ययौ कुरुन् भीष्मं कृपं स विदुरम् गन्धारीं द्रोणमेव च कौच संगम्य
यथा कष्टामिति हो सतुः
विज्ञातार्थो हि गोविन्दो दत्तानाकर्ण्यपाण्डवान्
भक्तिं
च कुल्यकर्णे
हरामो
ययौ कुरुम्
पंखा बंद कर देना चाहिए। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा विद्यातार्थः वास्तविकता को जानते हुए अपि भी गोविंदः श्री कृष्ण दग्धान लक्ष्य भवन में जले हुए आकर्ण्य सुनकर पांडवान पांडवों को कुंतिंच और कुंती को कुल्य करणे कुलोचित संव्यवहार के लिए सहरामः श्री बलराम जी के साथ ययो गए कुरुन कुरु देश में हस्तिनापुर। सप्त पंच सप्तमें तो पुनः सप्त धनुर्वधे प्राप्तम च दुर्जसो मार्ष्टि कृष्ण अक्रूरा हृतान मणे। इसे 57वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि सब धनवा का वध करने के कारण भगवान पर पुनः दुर्जस आ गया, तो उस दुर्जस को मिटाने के लिए उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया काशी से और उनके द्वारा मणि को प्रकट किया। अक्रूर को भगवान ने उस मणि का पात्र समझा और एकांत में अक्रूर जी से बात करके तब वे हस्तिनापुर गए थे, ऐसा वर्णन है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विज्ञातार्थ यपि श्री कृष्ण यह जानते थे कि पांडव बिल द्वार से लक्षा भवन से निकल गए हैं, परंतु इधर सब जगह यह प्रचार हुआ हल्ला हुआ कि लक्षा भवन में पांडव अपने मां के साथ जल गए। उनको जलाने के लिए ही दुर्योधन वह भवन बनवाया था जिसमें उनकी सम्मति थी धृतराष्ट्र महाराज सब मिल करके एक ऐसा भवन बनाए थे जिसमें ऐसे मैटर लगाए गए थे, ऐसे मटेरियल लगाए गए थे जो बहुत फ्लेमेबल थे, बहुत ज्वलनशील थे। थोड़ा सा ही आग पकड़ करके पूरा भवन अब्लेज हो जाता। तो इस तरह से भवन बनाकर और महाराज धृतराष्ट्र ने कहा था कि बेटा, युधिष्ठिर से कहा था कि बेटा यहाँ 100 लड़के हैं मेरे यहाँ संघट है, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा भवन बनवा दिया हूँ। वहां जाकर के तुम लोग रहो, तो उसको जतु गृह कहते हैं या लक्ष्य भवन। तो उसमें महाराज युधिष्ठिर रहते थे, लेकिन एक दिन स्वयं ही भीम ने आग लगाया महाराज युधिष्ठिर के कहने से, और विदुर जी ने एक टनल बना दिया था, सुरंग बना दिया था भीतर से। तो उस रास्ते से पांचों भाई अपने माँ के साथ निकल गए आग लगा कर। परंतु इधर सर्वत्र प्रचार हो गया कि पांडव जल गए, यहाँ तक कि पांच पुरुषों का शव झुलसा हुआ, जला हुआ, और एक स्त्री का भी शव मिला। तो एक भिलनी थी, वो आई थी अपने पांच पुत्रों के साथ, बरामदे में सो गई थी, जिसका पता नहीं था भीम को, और वह जल गए, पांचों भाई जल गए और वो भिलनी जल गई थी। तो सवेर रात में तो आग लगी थी, तो हल्ला हुआ, आग लगी है, सब लोग दौड़े, तब तक तो जल चुका था घर। इसके बाद खोजबीन की गई तो सौ मिले। तो अब किसको संदेह हो सकता था कि ये पांडव नहीं है, अब तो पहचानना कठिन था किसका सौ। तो हल्ला हो गया, सर्वत्र प्रचार हुआ, द्वारका में यह संवाद गया कि भगवान के फुफेरे भाई और उनकी फुआ सब जन। तो वहीं से कथा चालू कर रहे हैं। विज्ञातार्थ है, अर्थ का अर्थ वास्तविकता। भगवान जानते थे कि पांडव जले नहीं है, परंतु द्वारका में जब खबर गई, उन्होंने क्या खबर पाया कि पांडवन दग्धान, पांडव जल गए, दग्ध हो गए, और कुंती च दग्धमिति, और कुंती भी जल गई। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर आए। क्यों कुल्यकरण है? कुल्यकरण का अर्थ है कुलोचित व्यवहार के लिए ऐसे अवसर पर जाया जाता है, दुख में हाथ बटाया जाता है। अपनी बुआ मर गई है और अर्जुन जैसा मित्र मर गया है, युधिष्ठिर जैसे भाई, इस तरह से तो क्यों नहीं दुख की बात होगी। दोनों भाई बहुत रो रहे थे, द्वारका से ही प्रारंभ कर दिए रोना, पूरे रास्ते रोते हुए गए, और वहां जा करके जब मिलते थे भीष्म पितामह आदि से, तो वहां भी रो रहे थे। यद्यपि विज्ञाता थे, जानते थे कि वे नहीं जले हैं, वे सुरक्षित हैं, बिल द्वार से निकल गए हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है। बलराम जी भी रो रहे थे, वो भी रो रहे हैं। वहां जाकर के मिले भीष्मम कृपम सविदुरम गांधारीम द्रोणमेव च तुल्य दुख च सौ संगम में हा कष्टमिति ह उच्चतु। वहां जाकर सबसे पहले लोग भीष्म पितामह से मिले, कृष्ण बलराम, और भीष्म पितामह भी जानते थे कि मर गए हैं पांडव, उनको पता नहीं था क्यों नहीं मरे। कृपम और कृपाचार्य को पता था कि मर गए, यहां तक कि विदुर जी तक को विश्वास था कि वो मर गए, क्योंकि वो छह लाश जो मिला जला हुआ। तो अब विदुर जी को भी संदेह नहीं, विदुर जी को भी विश्वास हो गया कि पांच मर गए। तब विदुर जी भी बहुत दुखी थे, कृपाचार्य भीष्म पितामह गंधारी, माता गंधारी को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के इसे दुराभिसंधि का पता नहीं था, तो वो भी बहुत दुखी थे। और चकार से और भी अनुक्त कुछ लोगों से मिले दोनों भाई, तुल्य दुख, जितना भीष्म पितामह आदि को दुख था, उसी तरह से इन दोनों भाइयों को भी दुख था, तुल्य दुख। भीष्माद भी तुल्य दुख, भीष्मादि के समान ही इनको दुख था। और हा कष्टम इति हो चतु, हाय हृदय, इतना कष्ट आ गया, ऐसे आ गया, हाय हाय, हमारे पांच भाई मर गए और बुआ मर गई, यही दोनों भाई कहते थे। यह अद्भुत भगवान की लीला है। जब भगवान अवतार लेते हैं और संबंधी बनते हैं, तो सचमुच संबंधी हो जाते हैं, वो नाटक नहीं करते हैं। वो दोनों भाई रो रहे थे, तो वास्तव में दुख अनुभव से रो रहे थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुल्य दुख, दोनों को तुल्य दुख था। भीष्मादि को जितना दुख था, उतना ही दोनों भाइयों को दुख था। तो इस तरह से विलाप कर रहे थे। अब देखिए यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा नहीं मानने के कारण सत्राजित पर अनर्थ आया। यद्यपि वे विवाह कर चुके थे अपनी पुत्री का सत्यभामा का, मणि भी दिए थे, भगवान ने लिया नहीं था, लेकिन जो जीवन में इतना बड़ा पाप हो गया था, डायरेक्ट भगवान के आदेश को उसने ठुकराया था, वह पाप आगे उसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम जी चले गए थे हस्तिनापुर, तो ये बीच में अवसर पाकर अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा के पास पहुंचे उसके घर। सतधनवा एक वीर व्यक्ति था, अंधा बदमाश, ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो लब्धवा एतद अंतरम राजन, हे महाराज परीक्षित, आप राजनीति जानते हैं, यह अवसर पाकर के कृष्ण बलराम नहीं है, सतधनवा नमुचतो, सतधनवा से बोले, कौन कौन? अक्रूर कृत बर्माणव, अक्रूर और कृत बर्मा, मणि कस्मन न गृह्यते, मणि कस्मन न गृह्यते त्वया इति शेष, तुम मणि क्यों नहीं ले लेते हो? और उसको जाकर दोनों बहकाने लगे। एक तो वैसे ही वो खराब व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में ऐसा नहीं था कि मणि लेने का साहस कर पाए सत्राजीत के यहां से। तो ये लोग दोनों जाकर कहे, कस्मात मणि न गृह, मणि कस्मात न गृह, तो क्यों नहीं मणि ले लेते हो? अब जानते हो समन तक मणि कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोना उगलता है, ले लो। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, कृष्ण के ससुर हैं सत्राजीत, सत्यभामा के पिता हैं, तो कैसे मैं ले सकता हूँ? क्या आपका कहने का इरादा है? उसे जाकर के मांगू, वो मांगने पर देगा, और जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? कृष्ण बलराम को पता लगेगा तब तो वो कहता, तुमको पता है कि ये दोनों हस्तिनापुर गए हैं? तो दोनों हस्तिनापुर गए हैं, यहाँ है नहीं, तो इसलिए कृष्ण बलराम से जो भय होगा वो है नहीं। फिर भी वो कहा कि आखिर क्या उपाय हो, तो देगा नहीं, जीवित रहते हुए तो दे नहीं सकता है। तब ये लोग कहते हैं तो उसे मारो, मार करके लो। लेकिन सतधनवा कहा कि नहीं, आखिर क्यों मारे, क्या अपराध किया उसने? तो ये दोनों कहते हैं, यो अस्मभ्यम प्रतिश्रुत्य कन्या रत्नम विगर्ह्य नः कृष्णाया दान सत्राजीत कस्मात भ्रातर मन्वियात। वह प्रतिज्ञा किया था, वचन दिया था मेरे साथ विवाह करने के लिए सत्यभामा का, कृतवर्मा ने कहा है, उसने अक्रूर जी भी शामिल थे, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन दोनों साथ में थे तो दोनों का ही वचन माना जाएगा। कि अस्मभ्यम प्रतिश्रुत्य, हम लोगों के प्रति वचन दान दिया था, प्रतिज्ञा किया था सत्राजीत कि सत्यभामा का विवाह करेंगे, लेकिन उस कन्या रत्न को, श्रेष्ठ कन्या को कृष्णाय अदात, कृष्ण के लिए दे दिया। हमें इसका दुख नहीं है कि कृष्ण से विवाह किया, दुख इस बात का है कि कृष्ण से विवाह किया उसने अपनी पुत्री का, तो हमारा अपमान हो गया। आखिर लोग तो कहेंगे कि कृतवर्मा बेकार था, कोई गुण नहीं था, इसीलिए सत्राजीत ने कह करके भी कन्या दान नहीं, तो बिगर है ना, इसमें मेरी निंदा। आखिर हमारी कितनी बड़ी बदनामी किया, शुरू में ही नहीं कहा होता कन्या दान के लिए, विवाह की बात नहीं किया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कह करके और फिर प्रचार हो कि नहीं नहीं सत्राजीत विवाह नहीं किए क्योंकि कृतवर्मा में बहुत दोष है, या क्रूर जी और कृतवर्मा उसको जाकर बहका रहे थे, उसके मन में भाव पैदा कर रहे थे कि ये मारने लायक आदमी है सत्राजीत, इस तरह से वचन दे करके और कृष्ण से विवाह कर दिया, कौन गलती किया वे कृष्ण से कर दिया। कुछ आचार्यों का मत है कि अक्रूर जिससे भगवान मिल करके गए थे हस्तिनापुर और कहे थे कि आप प्रधान हैं, आप जो भी उचित हो करते रहिएगा, तो उनकी तो इच्छा थी कि इस तरह से लोक में दिखाया जाए कि भगवान की आज्ञा भंग करने का क्या दुष्परिणाम होता है। जगत के हित के लिए भगवान इस बात को प्रकाशित करना चाहते थे। तो अक्रूर जी से वो बहुत मिलकर गए थे कि जो भी उचित होगा, आप जो भी सोचेंगे सब होगा, और आप तो हमारे चाचा हैं, हमारे आंख हैं, सब कुछ हैं, तो चले गए थे। तो एक प्रकार से भगवान की भी अनुमति थी अक्रूर जी के लिए, डायरेक्ट उन्होंने कहा नहीं था। तो अक्रूर और कृतवर्मा जाकर कहने लगे कि हमको प्रतिज्ञा करके कन्या नहीं दिया, कन्या भी दे दिया, कृष्ण को रत्न भी दे दिया, कन्या रत्नम च अथवा कन्या रत्नम, कन्याओं में श्रेष्ठ शब्द भामा को दे दिया। तो सत्राजित भी क्यों नहीं अपने भाई के मार्ग पर ही चला जाए, कस्मन न सत्राजित कस्मत भ्रातृमन, क्यों नहीं अपने भाई के मार्ग पर जाए। भाई किस मार्ग पर गया था, प्रसेन मर गया था, तो कस्मन म्रियता में अर्थ क्यों नहीं ये भी मरे। सत्राजित को भी प्रसेन के मार्ग पर ही क्यों न भेज दिया जाए। प्रसेन कौन मार्ग पर गया था, परलोक मार्ग, मतलब मर गया था। ये भाषा अजीब है, वह भी क्यों न मरे, तो मारो। इस तरह से बहुत बहुत लोग समझाए मारने लायक और धन बहुत मिलेगा। एवं भिन्न मतिस्ताभ्याम सत्राजितम असत्तम शयानम अवधि लोभात सपाप छिण जीवित। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा उसकी मति भिन्न हो गई। भिन्न मति ही शब्द बता रहा है कि उसका अपना कोई निर्णय नहीं था इस प्रकार का, परंतु दोनों ने इतना इंस्टिगेट किया, इतना उसे चढ़ाया बढ़ाया कि वो बुद्धि बदल गया। उसके मन में आ गया कि तो बहुत बड़ा लाभ है, सत्राजित भी गलती किया है और धन जो प्राप्त होगा वो तो कहना ही नहीं इतना बड़ा। तो गया और सोए हुए सत्राजित का वध कर दिया। क्यों किया, लोभात लोभ से। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सच कहिए तो उसकी उम्र खत्म हो गई थी, मतलब सब धनवा की भी। सब पाप अक्षण जीवित, ऐसा काम करने जा रहा है और भी थोड़े जीवित रहेगा। सत्राजित को तो मार दिया, लेकिन अब तो तुरंत इसकी भी मृत्यु होगी ना। कृष्ण को पता चलेगा, बलराम जी को, तो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो सत्राजित को मारा क्या, उसकी भी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई थी, इसीलिए उस मृत्यु ने ही प्रेरित किया उसको सत्राजित का वध करने। कई बहुत बड़ा दुष्कर्म कोई कर देता है तो समझना चाहिए कि उसकी आयु खत्म हो चुकी है। अब इतना बड़ा साहस किया अब कि सत्राजित का वध किया, तो अब ये भी मरने वाला है। जिस समय वध कर रहा था सत्राजित का, तो स्त्रियों ने देखा, स्त्रियां हाय हाय कर रही थी, स्त्रीणाम विक्रोश माना नाम, सब रोने लगी, ऐसा मत कीजिए मत कीजिए। सब ने पहचान भी लिया कि सब धनवा है और सब रो रहे थे, मना कर रहे थे। क्रंद तीना मनाथवत, अनाथ की तरह बेचारी, असहाय की तरह स्त्रियां रो रही थी, लेकिन उस तरह से वध कर दिया जैसे कोई कसाई पशुओं का वध कर देता है, पशु का जैसे बकरा आदि का वध कर देता है। इस तरह से उसने वध कर दिया और मणि मादा जगमिवान और मणि लेकर के चला गया। इधर रात की घटना थी, रात में सोया था, जाकर वध कर दिया। अब सवेरे क्या हुआ, सत्यभामा च पितरम हतम वृक्षसु चार्पिता व्यलपत्ता तथा तेती हा हताश्मीति मुह्यति। जब सवेरे सत्यभामा जी ने सुना कि मेरे पिता की हत्या हो गई और जाकर के देखा भी, तो सुचार पिता उस शोक से व्याप्त हो गई, मन में शोक व्याप्त हो गया, विलाप करने लगी, हा पिताजी हा पिताजी हा तात हा तात, हाय मैं मारी गई, मैं पितृहीन हो गई, इस तरह से सत्यभामा जी विलाप कर रही थी। बाद में एक कड़ाही में, जो लंबा ऐसा था, कड़ाही में तेल भर करके और उसमें अपने पिता के शव को डाल करके कि वह सड़ने न पाए, और वह सत्यभामा जी सीधे रथ से हस्तिनापुर गई। भगवान वहां गए हुए थे। सत्राजित को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सत्राजित का संस्कार भी भगवान ही करने वाले थे, क्योंकि वही दामाद थे, जमाता थे, तो इसलिए भी सत्राजित का संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार आदि करने के लिए भगवान ही थे। तो अब उनको खबर देना था। और दूसरी बात है, जो घटना घट चुकी थी इस तरह से, तो इस पर भी कोई न कोई प्रतिक्रिया करनी थी, इसलिए वो चली गई सत्यभामा जी हस्तिनापुर। कृष्णाय विदितार्थ तप्त आचख्यो पितुर्वधन, बहुत तप्ता थी, तप्ता आचख्यो कहा, अपने पिता के वध के विषय में सारी बातें सुनाया कि सब धनवा ने किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया, कृष्ण से सुनाया। विदितार्थाय कृष्णाय, जब कृष्ण सब जानते थे, कृष्ण को यह पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, उसको विदित अर्थाय कहा था। ऐसा नहीं कि घटना होने के बाद भगवान जान गए थे, भगवान पहले से सब जानते थे कि ऐसा होगा, सत्राजित मारा जाएगा, लेकिन बड़े ध्यान से भगवान सुने और सुन करके रोने लगे। हाँ, पर सब जगह से कष्ट ही आ गया। तद आकर्णेश्वर राजन अनुसृत निर्लोकताम अहो न परमम कष्टम इत्यस्राक्ष विले पतु। दोनों ईश्वरों ने जब सुना, कृष्ण बलराम ने सुना कि हमारे ससुर का वध हो गया, तो मनुष्य लोक का अनुसरण करते हुए दोनों लगे विलाप करने। हाय रे, सब ओर से हम लोगों पर कष्ट ही कष्ट आ गया। इधर एक कष्ट सुन करके आए थे हस्तिनापुर के, हमारे फुफेरे भाई जल गए लक्षा भवन में, फुआ जल गई, और इधर ये सुन करके आए, तब तक उधर ससुर मार दिए गए। चारों तरफ दैव हम पर पड़ गया है, बहुत दुख हो रहा है, विपत्ति ही विपत्ति है, ये कह करके दोनों भाई खूब विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, कहते हैं कि भगवान को सब पता था, फिर भी दोनों मनुष्य निर्लोकता अनुसृत मनुष्य के भाव को अंगीकार करके विलाप कर रहे हैं। और अश्राक्ष आंखों में आंसू भरे थे, उमड़े थे, सचमुच विलाप कर रहे थे, न ड्रामा नहीं कर रहे थे, रो रहे थे। तो आगत्य भगवान तस्मा सभार जह साग्रजह पुरम, वहां पर पांडवों की अंत्येष्टि क्रिया आदि करके, ये जो होता है सब कुछ, उसमें भाग ले करके, और वहां से दोनों भाई आए अपनी पत्नी के साथ और बड़े भाई के साथ भगवान द्वारका आए। आकर के वे सब धनवानम हंतुम हरतुम मणिम ततः आरे थे। भगवान ने आरंभ किया सब धनवा को मारने के लिए और मणि खोजने के लिए, दो चीज का पता लगाना था कि कहाँ है सब धनवा, कहाँ है और मणि कहाँ है। भगवान ने आरंभ किया, आरंभ किया का मतलब कि सबसे पहले जब कृष्ण जी बलराम जी के साथ भगवान आए, तो उन्होंने ये पता लगाया कि सब धनवा जो वध किया है हमारे ससुर का, तो और कौन कौन लोग उसमें सहायक थे। ये बुद्धिमान थे भगवान, ये पता लगाना प्रारंभ किए। ऐसा नहीं कि अकेले वो ये काम किया होगा, इतना साहस उसका हो नहीं सकता, तो कोई न कोई यहाँ पर सहायक होगा। और कौन कौन थे, किसने इंस्टिगेट किया, कौन साथ दिया, इसके लिए भगवान पता लगाने लगे। और सद्धनवा का वध करना था, तो सद्धनवा जी ने साफ कहा था कि सद्धनवा ने मारा है मेरे पिताजी को, तो लाइफ फॉर लाइफ, उसको तो जीवन दंड देना ही था सद्धनवा को। लेकिन और कौन कौन लोग भाग लिए हैं, इसकी खोज करने के लिए भगवान अपने अंतरंग बंधुओं से मिलना प्रारंभ किए। अपने आदमियों से मिल करके काम करने से, ऐसे नहीं कि और फंस जाए कोई विशेष विपत्ति में, किसी को मारने चले और संकट में पड़ जाए, तो अपने लोगों से मिलना चालू किए। तो कृष्ण जब आए द्वारका और इस बात का पता चला सब धनवा को कि वे गोष्ठी कर रहे हैं मेरे वध के लिए और मणि के लिए, सोप कृष्णोद्यम अज्ञात्वा भीतः प्राण परीक्षा, अब तो प्राण रखने की लालसा से कैसे मैं जीऊंगा, अब कैसे जीऊंगा कृष्ण से द्रोह करके इतने बलवान से। जैसे कृष्ण को तो ऐसे भी बलवान कहेंगे कि बलवान, जैसे धन जिसके पास धनवान कहते हैं, तो इनका बड़ा भाई तो खास बल ही है, तो बलवान है हमेशा बल से युक्त है, तो ऐसे बलवान से बैर किया, अब कैसे प्राण बचेगा। तो वो सबसे पहले कृतवर्मा के पास गया, सहाय कृतवर्माणम अयाचत सचावृत, कृतवर्मा के पास जाकर के कहा कि अब हमारी प्राण हमारा प्राण बचाइए, अब आपके कहने से मैं यह कार्य किया, सत्राजित का वध किया, मेरा प्राण बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो कृतवर्मा तो भगवान को जानता था, उनकी महिमा को, वो कहता है सच अब्रवीत, कृतवर्मा कहा न हम ईश्वर यो कुर्याम हेलनम राम कृष्ण यो, मैं कृष्ण और बलराम का प्रतिकूल नहीं कर सकता, कोई और होता तुमको मारना चाहता तो मैं धनुष बाण उठाकर देख लेता, लेकिन कृष्ण बलराम से विरोध नहीं कर सकता, जानते हो दोनों कौन है, ईश्वर है, वे दोनों ईश्वर हैं, साक्षात भगवान है, उनसे मैं लोहा नहीं ले सकता। कौन क्षेमाय कल्पे तयोर ब्रिजन माचरण, कौन है तीनों लोकों में जो कृष्ण बलराम का अपराध करके और कुशल से रह सके, कोई नहीं है, हमारी क्या गिनती, हमसे तुम सहायता मांग रहे हो। अरे कंस सहानुगोपी तो जद्वेशात्याजित श्रेया, तुमको पता है ना कि जिनसे द्वेष करने के कारण कंस का राज्य गया, प्राण गया, सब खत्म हुआ, कंस मरने वाला व्यक्ति था, लेकिन कृष्ण से द्वेष किया तो उस हालत में चला गया, और फिर उसके बाद उसका ससुर जरासंध सप्तदश संजोगान विरथ हो गया था, जरासंध भी युद्ध में 17 बार बिना रथ के लौटा था अपने घर, इसका सारी सेना मार दी गई थी, सब कुछ हमेशा तपोवन में जाता था, विरथ हो गया था, उधर से रथ पर चढ़ कर आता था, मथुरा से पैदल जाता था ये हालत थी, 17 बार हारा जरा संध जैसा व्यक्ति, तो हम किस गिनती में, हम कभी कुछ नहीं कर सकते, और खबरदार कभी कुछ कहना मत कि हमने तुमको कुछ कहा था, हम क्या जानते थे तुम इतनी मूर्खता करोगे कि स्त्रियां देख लेंगी उसका वध करने में, तुमको हमने कहा लेकिन बुद्धि नहीं दे क्या, उसने क्यों मारा, जब स्त्रियों ने देखा तो तुमने क्यों वध किया, अब तो बात खुल गई, हम अब कुछ भी सहायता नहीं करेंगे, और खबरदार कभी किसी से मत कहना कि मैंने भी कुछ कहा था। अब तो टका सा जवाब दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, और वो तो बेचारा प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था, कौन मरना चाहेगा, तो फिर वो प्रत्याख्यात चाकुरम पार्श्वी ग्राहम अयाचत, फिर वहां से जब जवाब मिल गया तो वो अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी ने भी इसको इंस्टिगेट किया था, कहा भी होगा कि कोई संकट आएगा तो हम लोग देख लेंगे, ऐसे कहा भी होगा, लेकिन जब आ गया संकट तो अक्रूर जी कहते हैं सोप्या को विरुद्ध तब विद्वान ईश्वर और बलम, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा इस संसार में जो दोनों ईश्वरों के बल को जानते हुए भी उनसे विरोध करेगा, तो हम कृष्ण बलराम के साथ विरोध नहीं कर सकते, वे दोनों ईश्वर हैं, दोनों भगवान हैं, कर्मा भी कारक दोनों ईश्वर हैं और क्रूर भी कारक दोनों ईश्वर हैं, दोनों ईश्वर से कौन लड़ेगा। या इदम लीलया विश्वम सृजतवती हंति च चेष्टाम विश्व सृजोजस न विदुर्मोहिता जया। जानते हो इस विश्व की सृष्टि कौन करता है? तो कृष्ण और बलराम दोनों एक ही तत्व है, इसलिए एक वचन में बोल रहे हैं क्रूर जी। वही कृष्ण या बलराम इस विश्व की रचना करते हैं, इसको पालते हैं और संहार करते हैं। ये संपूर्ण विश्व उनके नियंत्रण में। अब ये तो लगे कृष्ण कथा कहने सहायता क्या करेंगे, क्रूर जी भगवान की महिमा गाने लगे। या इदम लीलया विश्वम सृजति अवति हंति च, सृजति सृष्टि करते हैं अकेले, और अवति रक्षा करते हैं पालन करते हैं, और हंति च चेष्टाम विश्व सृजो जस न विदुर मोहित आ जाए। यहाँ तक विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा शिव आदि भी भगवान के अभिप्राय को नहीं जानते हैं कि कब क्या करना चाहते हैं। कृष्ण के और बलराम के अभिप्राय को ये लोग भी नहीं जानते, वे सब उनकी माया से मोहित रहते हैं, भगवान की माया से मोहित रहते हैं। अतः हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, और कभी किसी से मेरा नाम मत बताना कि मैंने तुमको कुछ कहा था इस विषय में। और हम ये थोड़े कहे थे तुमको कि कृष्ण बलराम से युद्ध करो या हम उनसे रक्षा कर लेंगे। तुम्हारी मूर्खता थी जब तुम गए सत्राजित का वध किए, तो अगर तुमने देख लिया कि स्त्रियों ने देखा है तो क्यों क्या मारने की जरूरत थी। अब देखिए ये भी वही बात कहे जो कृतवर्मा का, तुमको पता है कृष्ण कौन है। यह सप्त हाय न सैलम उत्पाटय के न पाणिना दधार लीलया अबाल उच्छलिंग रमिवार भका। अभी कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, सप्त हाय न हाय न करते वर्ष, 7 वर्ष के जब कृष्ण थे, तो एक हाथ से पर्वत उखाड़ लिए और एक ही हाथ पर 7 दिन धारण किए। उसके साथ मैं विरोध करूंगा जो इतने बड़े पर्वत को एक पानी ना एक हाथ से धारण किया 7 दिन 7 रात। दधार लीलया, और वो भी खेल खेल में धारण किया, बांसुरी बजा रहे थे और गोवर्धन उठाए थे, कोई भार नहीं, आराम से उठाने में भी और धारण करने में भी कोई कष्ट नहीं हुआ। इतने भारी पर्वत को उस तरह से उन्होंने धारण किया था जैसे अर्भ का कोई बच्चा बरसाती छत्ते को कुकुरमुत्ता को धारण करता है। बरसात में कहीं कहीं छत्ता उगते हैं बच्चे, उसको बरसात में लेकर ऐसे उड़ने का नाटक भी करते हैं। वैसे धारण किया था गिरिराज पर्वत को गोवर्धन को, उनके साथ मैं विरोध नहीं कर सकता। अब तो अक्रूर जी तो गिरवर धारण की कथा में रम गए, भक्त हैं भगवान की लीला में रमे हुए, तो वो रक्षा की प्रार्थना कर रहा है तो एक कृष्ण कथा कह रहे हैं। इस तरह से एक उपलक्षण है, इस तरह का और अन्य भी बात वो सब कह रहे कि काली का उन्होंने दमन किया, यह किया वह किया सब किया। तो कृष्ण जी का तो स्वभाव है भगवान की लीला में अविष्ट रहते हैं, इसीलिए सब धनों की बातों पर उन्होंने कान ही नहीं दिया, सीधा भगवान की महिमा कहने लगे और कहे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सद्धमा ने कहा कि तो आप क्यों कहे उस समय आकर मेरे घर पर आकर के आप लोग कहे कि तू सद्धमा का वध करो। तो क्रूज ने कहा क्या मैं कहूंगा कुआं में कूदने के लिए, तो कुआं में कूदोगे। जैसे जैसे कहा तो वैसे क्यों नहीं किया। अब तुम मरो चाहे जियो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो भगवान की बस भक्ति करते हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुत कर्मणे अनंतायाधिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। मैं तो भगवान कृष्ण को सदा नमस्कार करता हूँ, जिनके कर्म अद्भुत हैं, जो अनंत हैं, समस्त जीवों के आदि कारण हैं, और जो